Glad that the Lord has brought me back again in a different context.
मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि दूसरे कारण से आज यहाँ पर आपके बीच हूँ.
This morning I want to turn your attention to Hebrews chapter 12.
आज सुबह के वक्त हम इब्रानी के पत्र उसके 12वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे.
And we are going to read the first three verses.
और उसके पहले तीन पदों को हम पढ़ेंगे.
Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Now, this is a very, very encouraging exhortation in the book of Hebrews.
हम इब्रानियों के पत्र से बहुत ही प्रोत्साहन करने वाली हमने वाक्यों को पढ़ा.
I also want to do an exposition of this passage that should encourage every one of us here this morning.
और मैं इस भाग को इस प्रकार से खोल के आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं प्रोत्साहित हो जाएं.
Now here the principal clause is let us run.
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ इसलिए हम दौड़ें.
That is the exhortation given to us here.
यहाँ पर यही प्रोत्साहन करने वाली बातें हमें दी गई है.
Now this is an exhortation to believers.
ये विश्वासियों के लिए कही गई बात है.
Let us all run.
आइए हम सब दौड़ें.
Young and old.
बुढ़े और जवान.
Men and women.
आदमी और औरत.
All of us.
सब कोई.
Irrespective of who we are, if we are believers, the exhortation comes to us.
ये प्रोत्साहन इसलिए है कि उनके लिए आप कोई भी क्यों ना हो लेकिन विश्वासी हैं तो दौड़ेंगे.
Let us run.
आइए हम दौड़ें.
Now what is this running?
ये दौड़ना क्या चीज है?
In the Bible, generally, walking refers to our Christian life and race refers to Christian ministry.
हम देखते हैं कि बाइबल में जब आप चलते हैं तो आपके मसीही जीवन को बतलाती है और आप दौड़ते हैं तो मसीही सेवकाई को बताती है.
Enoch walked with God. That talks about his daily life.
हम देखते हैं हनोक प्रभु परमेश्वर के साथ चला उसके जीवन के बारे में बताती है.
Let us run this race that, even Paul talks about running a race.
पौलुस भी दौड़ के बारे में बताता है.
That refers to our Christian ministry.
वो प्रभु की हमारे मसीही सेवकाई को बताती है.
But here, I think the race is both our life and service.
यहाँ पर जो दौड़ बताई गई है वो हमारी जीवन और हमारी सेवकाई.
We cannot say that this is only about the ministry we are doing.
ये सब उस बात को नहीं बताती कि जो सेवकाई हम करते हैं.
Both are there.
ये दोनों बातें यहाँ पर.
So in Hebrews 12 context, it refers to our daily Christian life and our service for the Lord.
इसलिए इब्रानी की पत्री 12 अध्याय में हमारी जीवन और प्रतिदिन प्रभु की सेवकाई को बतलाती है.
Now this chapter begins with a word wherefore or therefore.
और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्रिया का जो यहाँ पर उपयोग किया गया इस कारण.
That means there is something before this.
उसका मतलब इससे पहले और कुछ भी है.
Chapter 12 verse 1 is not the beginning of this concept.
जिसका मतलब ये है कि 12 अध्याय उसका पहला वचन इसका शुरुआत नहीं है.
Therefore let us run.
इस कारण हम दौड़ें.
Oh, then we need to ask that question. What is that therefore? What does that mean?
इसलिए सवाल उठता है कि ये के कारण क्या है.
You know when Hebrews was written there were no chapters or verses.
हम जानते हैं कि जब इब्रानी की पत्र लिखी गई थी तब ना अध्याय थे ना आयत थे.
It was written like an essay or a letter.
वो एक पत्र के समान लिखा हुआ था.
Later for convenience sake it was divided into chapters and verses.
हम जानते हैं समझाइश के लिए बाद में आयतों में और अध्याय में बांटी गई.
So the writer to the Hebrews,
इसलिए इब्रानी को लिखने वाला,
in chapter 11 describes the faith life of so many men and women.
11वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से विश्वास के जीवन और बहुत सारे आदमी और औरतों के बारे में कहता है.
He narrated the life story of so many men.
और बहुत सारे पुरुषों की जो जीवन है उसके बारे में बतलाता है.
Finally he got tired.
आखिरी में वो थक जाता है.
He said, "What shall I now say?"
वो कहता है कि अब मैं क्या लिखूं?
There are many more.
और भी बहुत हैं.
How can I say about all of them?
मैं उन सब के बारे में कैसे विस्तार से कहूं?
So he wrote about many and finally he says, "Well, there are many more. I have no time to talk to you about all of them."
इतने लोगों के बारे में लिखने के पश्चात वो कहता है और भी बहुत हैं अब मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए.
So in chapter 11 of Hebrews,
इसलिए 11वें अध्याय इब्रानियों
के, we have a list of men who ran.
ऐसे पुरुषों के बारे में बतलाई गई है जो दौड़ते हैं,
हु वॉक्ड विद गॉड,
जो प्रभु के साथ चलते हैं,
एंड हु परफॉर्म ग्रेट मिरेकल्स फॉर गॉड,
और बड़े आश्चर्यकर्म परमेश्वर के लिए उन्होंने किया।
हैविंग स्पोकन ऑफ दोस मेन,
अब इन सब के बारे में बतलाने के पश्चात,
रेफरेंस टू वीमेन ऑल्सो आर देयर,
औरतें भी हैं,
एंड इन चैप्टर 12
उसके 12वें अध्याय में
He says, "Wherefore, seeing that we have such a cloud of witnesses around us, let us also run."
वो लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा एक बादल या समागम है, चलो हम चलते दौड़ते हैं।
I would like to show you four things from the passage we read.
इस भाग से मैं चार बातों को रखूंगा।
The first one is the context of the race.
सबसे पहली बात उस दौड़ने का कारण।
What is the context? What is the background?
वो उसका पृष्ठभूमि क्या है?
You know that connects to the context in verse 11, chapter 11 through that word.
और इससे जब उस पृष्ठभूमि को समझते हैं तो 11वें अध्याय में इसका मतलब निकलता है इस कारण।
सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस दैट द राइटर इज राइटिंग,
इसलिए किस कारण या कौन से कारणों से उसके उस अध्याय को लिखता है?
वेल इट इज क्लियरली मेंशन देयर,
वहां पे साफ ढंग से लिखी हुई है,
सीइंग वी ऑल्सो आर कंपेस्ड अबाउट विद सो ग्रेट अ क्लाउड ऑफ विटनेसेस,
गवाहों का ऐसा एक बादल हमको घेरे हुए हैं,
वी हैव सो मेनी विटनेसेस अराउंड अस,
हमारे चारों तरफ बहुत सारे गवाह हैं,
अबाउट देम वी ऑलरेडी रेड इन हिब्रूस 11,
उनके बारे में हमने 11वें अध्याय में पढ़ चुके हैं।
नाउ दैट वी हैव सो मेनी विटनेसेस हु हैव रन द रेस अराउंड अस,
अब क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो गवाह हैं हमारे चारों तरफ हैं,
लेट अस ऑल्सो रन,
आओ हम भी दौड़ें।
वी रीड अबाउट एबल,
हाबिल के बारे में पढ़ते
हैं, वी रीड अबाउट इनोक,
हनोक के बारे में पढ़ते
हैं, वी रीड अबाउट नोआ, इब्राहिम, सेरा, आइजैक,
सारा और इसहाक,
वी रीड अबाउट जेकब एंड जोसेफ,
याकूब और यूसुफ,
मोसेस एंड डेविड,
मूसा और दाऊद,
एंड सेवरल अदर्स,
और फिर बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग।
नाउ दैट वी हैव सच अ लॉट ऑफ विटनेसेस स्टैंडिंग अराउंड अस,
अब इतने सारे गवाहों का बादल हमारे घिरे हुए हैं,
लेट अस रन,
हम दौड़ें।
सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस,
तो इसका पृष्ठभूमि दौड़ का यही है।
सो मेनी हैव ऑलरेडी रन,
इतने लोगों ने दौड़ चुके हैं,
दे हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ,
अपने जीवन में उन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया,
दे हैव प्लीज्ड गॉड बाय देयर लाइफ,
उनके जीवनों से परमेश्वर को उन्होंने भाया है,
दे हैव प्लीज्ड गॉड बाय देयर मिनिस्ट्री सर्विस टू गॉड,
उनकी सेवकाई से उन्होंने परमेश्वर को भाया है,
इन द लाइट ऑफ दिस,
अब इसके मुताबिक
लेट अस ऑल्सो रन,
हम भी दौड़ें।
That is the context of the race.
यही है उस दौड़ की पृष्ठभूमि।
Now that reminds us that we are not alone in this race.
इसका मतलब ये हमें समझाते हैं कि हम अकेले नहीं है इस दौड़ में।
We are also running.
हम भी दौड़ रहे हैं।
In our Christian life and in our Christian service.
हमारे मसीही जीवन में और मसीही सेवकाई में।
Not only full-time workers, all of us believers.
पूर्णकालीन सेवक सिर्फ नहीं, लेकिन हम सब जो विश्वास।
All sisters and all brothers.
सारी बहनें और सारे भाई।
We are all in a race.
हम सब एक दौड़ में हैं।
We are running for the Lord.
हम प्रभु परमेश्वर के दौड़ते
हैं। We are running looking to the Lord.
प्रभु को देखते हुए दौड़ते हैं।
We live our day-to-day life with the Lord.
हमारे दैनिक का जीवन हम प्रभु के लिए जीते
हैं। And we are all in the service of the Lord.
और हम सब प्रभु की सेवकाई में हैं।
You may be in a secular service in this world.
हो सकता है आप अपनी नौकरी में हैं।
But ultimately you are serving the Lord.
लेकिन आखिर में आप प्रभु की सेवकाई करते हैं।
You may be a student but you are still serving the Lord.
हो सकता है आप विद्यार्थी हैं लेकिन प्रभु की सेवकाई करते हैं।
So in the context we see that we are not alone in this race.
इसलिए पृष्ठभूमि के मुताबिक हम समझ पाते हैं कि इस दौड़ में हम अकेले नहीं हैं।
You know, sometimes we feel that I am the only one.
कई बार हमें लगता है सिर्फ मैं ही हूँ।
In my college there is no other believer.
मेरे कॉलेज में दूसरा कोई विश्वासी नहीं।
In my college there is no one holds on to the standards that I am holding on to.
हमारे कॉलेज में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कि जो स्तर को मैंने पकड़ा उसको पकड़ा।
They all do so many wrong things.
वो बहुत सारे गलत कार्यों।
They have wrong friendships.
उनके गलत दोस्ती हैं।
And that's just natural for them. They don't think that's wrong.
ये उनके लिए बहुत स्वाभाविक है, उन्हें नहीं लगती कोई गलत कर रहे हैं।
I am the only one who is out of the crowd.
सिर्फ मैं ही हूँ सारे झुंड से अलग हूँ।
I stand alone.
मैं अकेला हूँ।
What's the point in standing all alone?
अकेले खड़े रहने में क्या मतलब?
When all the others are dressing that way, what's the point in my dressing this way?
जब बाकी लोग सब दूसरे प्रकार के कपड़े को वस्त्र धारण करें तो मैं वैसे क्यों?
When they all go there, what's the point in my not going there?
जब वो सब वहाँ पर जाते हैं तो उस जगह पर मैं क्यों नहीं जाऊँ?
I am all alone.
मैं अकेला हूँ.
That's a feeling that can come to all of us, not only students but to all of us.
ये सब विद्यार्थियों के लिए नहीं, सबों के भीतर इस प्रकार की सोच आ.
Everyone in the society is living a different kind of life.
समाज में हर एक व्यक्ति अलग जीवन बिताता है.
What is the point in my living a different life, a separated life?
लेकिन मुझे अलग सा जीवन बताने की क्या आवश्यकता?
I am all alone. There's no one.
मैं अकेला हूँ, कोई नहीं मेरे साथ.
But this passage tells us that you are not alone.
लेकिन ये भाग बताता है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं.
We have a great cloud of witnesses.
बादल का बड़ा घेरा है.
You are not the only one who is running.
आप सिर्फ अकेले नहीं जो दौड़ते
हैं. Many have already completed their race.
बहुत लोगों ने इस दौड़ को पूरा कर लिया है.
We read about so many of them.
उनके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा.
Job, he lived a godly life.
हम देखते हैं कि अय्यूब बड़े धार्मिक जीवन को
बिताता है. David, he was a man after God's own heart.
दाऊद जो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था.
Paul, he finished his race well.
पौलुस जिसने अपने दौड़ को समाप्त किया अच्छे.
Moses, he lived a life pleasing to God.
मूसा एक ऐसे व्यक्ति जिसने परमेश्वर को भाई अपने जीवन.
Abraham, by faith he achieved great things.
इब्राहिम विश्वास के द्वारा बड़े कर्मों को उसने किया.
Women like Sarah and others, they also did great things.
औरतें सारा के जैसे उन्होंने बहुत बड़े कार्यों परमेश्वर के लिए किया.
We are not alone.
हम अकेले नहीं है.
That should encourage us.
ये बातें हमें प्रोत्साहित करें.
Now, let's forget about the past.
अब पूर्व काल को भूल जाएं.
What about today?
वर्तमान में
क्या? All over the world.
सारे संसार में.
If you travel around the world,
यदि आप संसार में
you will see that there are so many men and women who are standing for the Lord and for the truth.
आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे आदमी और औरत हैं जो सच्चाई के लिए और परमेश्वर के लिए खड़े हैं.
So the context tells us that we are not alone. There are many others who are running who have already run.
इसलिए पृष्ठभूमि इस बात को बतलाती है कि ऐसे अकेले नहीं है, बहुत सारे दौड़े हैं, दौड़ चुके हैं.
एंड दैट शुड एनकरेज अस.
और ये हमें प्रोत्साहित करे.
देयर आर मेनी अदर यंगस्टर्स हु लव द लॉर्ड.
यहां बहुत सारे जवान हैं जो प्रभु को प्रेम करते हैं.
देयर आर मेनी अदर्स हु आर स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ.
बहुत सारे जो सत्य के लिए खड़े हैं.
That's a great encouragement for us.
ये बड़ी प्रोत्साहन की बात है.
Now when you look at these people who ran in chapter 11,
जब 11 अध्याय में पढ़ते उन लोगों के बारे में जो दौड़ चुके हैं.
It was good if we could read the whole chapter.
अच्छा रहता कि पूरे अध्याय को हम पढ़ें.
But we have no time to do that.
लेकिन समय की कमी है.
You know, it repeatedly says by faith they did this.
बार बार एक सत्य को देखते हैं, देखते कि विश्वास के द्वारा उन्होंने किया.
So the context tells us that they did this. They walked with God or they ran by faith.
इसलिए इसका पृष्ठभूमि इस बात को साफ बतलाती है वो विश्वास के कारण दौड़ते हैं.
What does that mean?
इसका मतलब
What's the meaning of by faith?
विश्वास का मतलब क्या है?
You see, faith always has to do with God, His person and His work.
हम जानते हैं कि विश्वास हमेशा परमेश्वर से और उनकी सेवकाई से तात्पर्य रखता है.
Now in Hebrews 11:1 there is a definition for faith.
अब हम वहाँ पे इब्रानी 11 उसके पहले वचन में उसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं.
That is of course true. We believe that.
और वो सत्य है, हम विश्वास भी करते हैं.
But generally in the scriptures,
लेकिन साधारण तौर से शास्त्र में,
when we say faith, what is meant by that?
जब हम विश्वास कहते हैं तो उसका मतलब क्या है?
You know, in these days in charismatic circles and so many Christian circles, they talk a lot about faith.
हम जानते हैं आजकल charismatic और अन्य गुटों में विश्वास के बारे में बहुत कहते हैं.
Have faith in God.
कहते हैं कि परमेश्वर पे विश्वास रखो.
Pray with faith.
और विश्वास के साथ प्रार्थना करो.
What's the kind of faith that many of them are talking about?
ये किस विश्वास के बारे में ये लोग कहते हैं?
You need a car.
आपकी गाड़ी आपके पास कार होनी चाहिए.
And in faith you pray.
और विश्वास में आप प्रार्थना करें.
Don't minimize your faith. Pray for BMW or Benz.
आप अपने विश्वास को कम ना आके BMW या Mercedes Benz के लिए प्रार्थना.
Even the color you can specify.
और अपने उस रंग भी आप बता दें.
I am not telling you a joke. I am just quoting some other preachers.
मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ प्रचारकों के बारे में कह रहा हूँ.
Have faith.
ये विश्वास रखें.
Is not God able to give you BMW?
क्या परमेश्वर आपको BMW कार नहीं दे सकता?
Can he give you only Maruti 800?
क्या सिर्फ मारुति 800 ही चलाएंगे आप?
No, he can give you BMW.
नहीं, आपको BMW दे सकता.
Have faith in God. Our God is great.
आप विश्वास रखें, हमारा परमेश्वर महान है.
That's the kind of stuff that's going around and people think strongly believing that God will give me BMW is faith.
और बहुत सारे लोग इस प्रकार से विश्वास भी करते हैं कि मैं विश्वास करूंगा और BMW मुझे मिलेगा.
Recently, I don't know if you saw this, some of you may have seen a Christian sister exercising faith.
आप लोग शायद देखे होंगे, नहीं मालूम, एक मसीह बहन अपने विश्वास को परखने की कोशिश करती.
Now, I don't mean to despise her in any way.
मैं उस बहन को तुच्छ नहीं समझना चाहता.
But just to prove a point, I'm just quoting this.
लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ बातें हैं.
Her husband was a good servant of the Lord.
उनके पति परमेश्वर के बड़े सेवक थे.
And he was taken by the Lord.
प्रभु ने उठा लिया, गुजर गया.
And she believed that God can raise her from the dead.
और वो विश्वास करती थी कि उनके पति को परमेश्वर मृत्यु में से उठा सकते हैं.
it was being webcast, that is all over the world people were watching the funeral.
और संसार में चारों तरफ संसार भर में लोग उसको इंटरनेट के माध्यम से देख रहे थे.
While so many pastors were seated,
जब बहुत सारे पास्टर लोग वहां बैठे हुए थे,
including the most senior pastors in IPC,
और IPC के उनका काफी सीनियर जो पास्टर होते हैं वो
भी. She challenged those pastors and said, "Do you have faith?"
उन्होंने इस प्रकार से ललकारा उन सारे पास्टरों को कहा कि क्या आपके अंदर विश्वास है.
All those who have faith stand up.
उन्होंने कहा कि जिनके अंदर विश्वास है खड़े हो जाएं.
When this lady says that, what shall the pastors do?
जब बहन इस प्रकार से कहते तो पास्टर क्या करेंगे?
Whether to stand up or not.
क्या करें, खड़े हों या ना हों?
We are going to pray with faith that my husband should be brought back to life.
और उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ कि मेरे पति जी उठे.
You preachers, you preach about the Lord bringing Lazarus back to life, right?
उन्होंने कहा कि आप लोग प्रचारक लोग हो और आप लोग कहते हैं लाजरस को जीवन में वापस लाया.
This is what that wife is saying. The whole world is saying this. It's not something that she did in secret.
और वो ये बहन वो सारे संसार जब देख रही थी तो उन्होंने खुलकर यह बोला.
Let's just to cut short the story.
मैं छोटा रखूं.
She said, "I command you in the name of Jesus to come up."
उन्होंने कहा कि मैं आज्ञा देती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो
उठ जा. I command you, come back.
मैं आज्ञा देता हूं कि तू वापस आ जा.
And someone who was telecasting that.
और जो व्यक्ति इसको टेलीकास्ट कर रहा था.
Of course, he never came back.
बात सत्य है कि वो जी नहीं उठा.
That pastor who was telecasting that. He says, "Look at her faith."
जो पास्टर इस बात को टेलीकास्ट कर रहा था वो कहता है इस औरत के विश्वास को देखिए.
What a faith that woman has!
क्या विश्वास है इस औरत में?
And he is exhorting all the others to exercise that such faith.
और सारे विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि ऐसे विश्वास को आप देखें.
Nothing happened.
कुछ नहीं हुआ.
The whole world saw it.
सारे संसार ने देखा.
What was wrong?
क्या गलती हुई?
Was she not sincere?
क्या वो वास्तविक नहीं थी?
Yeah, she was sincere, no doubt.
उसमें सच्चाई थी बिल्कुल.
I have nothing against her by saying this.
उस बहन के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है.
But she had a wrong understanding of faith.
लेकिन विश्वास का गलत समझ थी.
Something that we feel strongly inside, that is faith according to many people.
बहुत सारे लोगों के हिसाब से मैं जो मेरे मन में ठान लेता हूं वही विश्वास है.
That is not the faith of the Bible.
बाइबल का विश्वास ये नहीं.
When the Bible talks about faith,
जब बाइबल विश्वास के बारे में कहती है,
it is the reliability and trustworthiness of God.
वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार से हम मान सकते हैं. परमेश्वर मानता
है. My understanding of who God is and what he can do, that is faith.
मेरा विश्वास ये कि परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है, ये विश्वास है.
See, we read in Romans that Abraham believed God.
हम रोमियों के पत्र में पढ़ते हैं कि इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास रखता है.
What does that mean?
उसका मतलब
he believed in the person of God and in the power of God to fulfill what he has promised.
वो इस बात पर विश्वास करता था इब्राहिम की परमेश्वर कौन है, वो कौन सा कार्य जिसको वो पूरा कर सकता है.
Abraham did not get a bright idea one morning that he is going to have a son.
इब्राहिम को एक दिन ऐसा आइडिया नहीं आया कि उसके पुत्र जन्मने वाला है.
And he is saying, "I am going to have a son."
और ये इस प्रकार से नहीं कहता इब्राहिम कि मेरा एक बेटा होगा.
That is foolishness.
वो तो मूर्खता है.
God promised that you are going to have a son.
परमेश्वर ने उसको कहा, उसको वादा दिया कि तेरा बेटा होगा.
And he believed that what God has promised he is able to perform.
और वो जानता था इब्राहिम की परमेश्वर ने जो कहा उसको वो पूरा कर सकता.
I can give you many examples of false faith from contemporary life.
मैं आजकल के वर्तमान के युग में से आपको ऐसे बहुत सारे विश्वास के बारे में बता सकता
हूं. For want of time, I am not doing that.
समय बहुत कम है.
So what is faith?
तो विश्वास क्या है?
It is not just imagining something in your mind and strongly believing it will happen. That is not faith.
विश्वास ये नहीं कि मैंने मन में अपने दिमाग में सोच लिया और वो होने वाला है.
Where is that verse in the Bible that God says God will give you BMW?
कहां है बाइबल में वो वाक्य, वो वचन जो कहता है परमेश्वर आपको BMW कार देगा?
Where is that verse?
वो पद कहां है?
If God has promised in some place that to everyone who asketh I will give BMW, then that prayer is based on faith.
यदि बाइबल में इस प्रकार से लिखा होता कि जो कोई व्यक्ति मुझसे मांगता है उसको ऐसी गाड़ी दूंगा, तो वो प्रार्थना विश्वास में.
यू नो सम पीपल डोंट हैव हेयर ऑन देयर हेड.
कुछ लोगों के सर पे बाल नहीं.
दैट इज नॉट देयर मिस्टेक.
ये उनकी गलती नहीं है.
वेल, अ मैन प्रेज विद ग्रेट फेथ that I must have hair on my head.
एक व्यक्ति विश्वास के साथ प्रार्थना करता है कि मेरे सर पे बाल खिल जाएं.
I believe with all my heart God can do it.
और मैं विश्वास करता हूं मेरे मन में कि परमेश्वर
exercising faith in prayer.
और विश्वास को अपने प्रार्थना में दिखाता है.
That is absolute nonsense.
ये बिल्कुल मूर्खता है.
Because there is no verse in the Bible, God has not promised anywhere that you will get hair on your head.
क्योंकि बाइबल में हम ऐसा कहीं नहीं पढ़ते कि परमेश्वर कहता है कि तेरे सर पे बाल होंगे.
Bible only talks about falling hair.
बाल के झड़ने के बारे में बताता है.
In Matthew 6 the Lord talked about it. You know that.
मत्ती छठवें अध्याय परमेश्वर कहता है.
God has prepared a body for you, glorified body, where you will have no problem of baldness. That is what the Bible says.
बाइबल इस बात को बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे शरीर का निर्माण किया जो महिमान्वित होगा.
If you believe that one day I am going to have a wonderful head, you are right because it is promised in the Bible.
एक दिन यदि आपको लगता है कि आपको बहुत ही खूबसूरत सर होने वाला है तो सही है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है.
That's about glorification.
वो महिमा के पश्चात है.
So what I am trying to say is,
जैसे मैं इस बात को कहता हूँ,
faith is not something that we imagine and cook up in our own excitement in our mind and our strong belief in it. That is not faith.
विश्वास ये नहीं कि मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, समझ लिया और शायद वो इस प्रकार से होगा, वो विश्वास नहीं.
Faith is trust in the reliability and the faithfulness of who God is and what God can do.
परंतु विश्वास ये है कि जब मैं इस बात को मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ कि वो कर सकता है जो मुझे मेरे लिए करना चाहता
है. So in Hebrews 11 when it says they lived or ran by faith,
इसलिए इब्रानियों की पत्र 11 अध्याय में जब पढ़ते हैं कि वो चलते हैं या दौड़ते हैं,
that means they relied upon the revelation God gave them.
उसका मतलब ये कि वो प्रकाशित बातों के ऊपर वो विश्वास रखते हैं.
Or the promises God gave them.
या वो वादे जो परमेश्वर ने उनके लिए दिया है.
They acted accordingly.
और उन वादों के ऊपर निर्भर होकर उनने सेव किया.
That is faith.
ये विश्वास है.
We also should not be misled by all these people.
हम भी ऐसे लोगों के द्वारा गलत मार्गों पे ना चले जाएं.
Faith is based on who God is, what He has promised.
विश्वास इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर कौन है और उसने कौन से वादे किए.
If God hasn't promised something, you're believing that has no foundation.
यदि परमेश्वर ने किसी वस्तु के बारे में वादा नहीं किया है और उस पर विश्वास करते हैं तो बेकार है.
So it's very important to understand what is biblical faith.
इसलिए बहुत अहम है इस बात को जानना कि बाइबल का विश्वास क्या है.
And the third thing I would like to say about the context.
तीसरी बात पृष्ठभूमि के बारे में कहूं.
First we said we are not alone. The context says that there are many others.
पहले बात हमने इस बात को पढ़ा, समझा कि हम अकेले नहीं, दूसरे और भी हैं.
And the second thing I said is the context tells us that they all did this by faith.
और दूसरी बात हमने इसको समझा कि वो सब विश्वास के माध्यम से किए.
And a third encouraging thing for us here.
तीसरी प्रोत्साहन की बात.
These people who ran and achieved great things, none of them were perfect.
कि जो लोगों ने दौड़ा और उन्हें उसको प्राप्त किया, उनमें से कोई भी सिद्ध नहीं था.
Many of them have failed.
बहुत सारे लोग उसमें से पराजित हो गए थे.
Many of them were weak.
बहुत हैं जो कमजोर हो.
Many of them had problems.
बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी.
Many of them were terribly tempted.
और उसमें से बहुत से जो काफी परीक्षित हुए थे.
But in spite of all this, they still ran.
लेकिन इन सब के पश्चात वो दौड़ते हैं.
That is what Hebrews 11 tells us.
इब्रानियों की पत्र 11 इसी बात को बतलाता
है. We have no time to study about each one of them now.
एक हर वस्तु को पढ़ नहीं सकते.
But let me just make some general comments.
लेकिन मैं ऐसे साधारण रूप से बताऊं.
They were weak people, men like us.
कि वो कमजोर थे आपके और मेरे जैसे.
Still they ran.
फिर भी दौड़े.
You know, when you read about some great men,
जब आप कुछ महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं,
the Bible or in the history,
बाइबल में या इतिहास में,
we say, well, they can do like that, not me.
हम कह सकते हैं कि वो तो कर सकते हैं, लेकिन
I'm not like them.
मैं तो उनके जैसे
नहीं. They were great men.
वो बहुत महान
लोग थे. I'm just an ordinary girl. What can I do?
मैं साधारण सी एक लड़की हूँ, मैं क्या करूँ?
Never say that.
कभी भी ऐसा ना.
There is no special person in the Bible.
बाइबल में कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं.
There is no superman in the Bible.
बाइबल में सुपरमैन है ही नहीं.
सुपरमैन आर ओनली इन टीवी एंड कार्टून. इन रियल लाइफ there is not even one superman.
वास्तविक जीवन में कोई सुपरमैन नहीं, सिर्फ टीवी और कार्टून में.
Paul was a man just like me.
पौलुस मेरे जैसे एक आदमी था.
How do I know?
मुझे कैसे मालूम?
In 2 Corinthians 12 he says when God began to use him, You know, there was a possibility that he would become proud.
2 Corinthians 12th अध्याय में पॉलस कहता है कि जब परमेश्वर को इस्तेमाल करने लगा उसको लगा कि अहंकारित हो जाएगा.
Paul, that is my problem also.
वो तो मेरा भी समस्या है.
When God uses me in different parts of the world,
जब परमेश्वर मेरे इस्तेमाल करता है संसार के विभिन्न,
I am also tempted to be proud. So you are like me only.
मैं भी परीक्षित हो जाऊं क्योंकि मैं भी घमंडी हो जाऊं.
Oh, I am very happy to hear that.
मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे,
so you also have the problem of pride, when someone says your message is excellent, you are also likely to get proud.
जब आपसे कहते हैं कि आपका प्रचार बहुत अच्छा था तो आप भी शायद घमंडी हो सकते हैं.
What about Jacob?
याकूब कैसे था?
चालाक. That's the meaning of his word. You know that.
उसका अर्थ है चालाकी.
Oh, चालाक. So you mean to say you are चालाक like us?
तो आप कहते हैं कि आप भी हमारे जैसे चालाक हैं?
Exactly.
बिल्कुल सही.
That's what he did.
वैसे उसने किया.
But his name is there in Hebrews 11.
लेकिन इब्रानी 11 में उसका नाम लिखा हुआ.
As a great man of faith who performed wonderful things.
उसने इतना बड़ा व्यक्ति विश्वास ऐसे महान कार्यों किया.
इब्राहिम. Oh, I just did last week what you did.
और पिछले सप्ताह मैंने वही किया जो तुमने किया.
Told a lie.
मैंने झूठ बोला.
So you also have told lies, huh?
तो आपने भी झूठ बोला है.
So you are like me only.
तो आप भी मेरे जैसे.
When you got into trouble to save your face, you told a lie.
जब आपकी अपने आप को बचाने के लिए फंस गए थे तो आपने झूठ बोला.
Yeah, when we also get into trouble, sometimes we tell lies.
हम भी जब समस्याओं में पड़ जाते हैं झूठ बोलते हैं.
No, I'm not justifying these things.
मैं इस बात को सही है करके नहीं बता रहा.
I'm only saying that they were men like us.
मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो भी हमारे जैसे इंसान थे.
Never say those who have lived a life pleasing to God were special men and women.
हम कभी ये नहीं बोले कि जो परमेश्वर प्रभु परमेश्वर की बातों को मानते वो विशेष लोग थे.
No, there is no special man or woman in the Bible.
बाइबल में कोई विशेष व्यक्ति नहीं है.
We read about Elijah. He was a man of like passions as we are.
हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जैसे समस्याओं से एलिया में भी था.
I'm not saying that because they did this, we can also do this. Because they did something wrong, it's all right to do it. That's what I'm saying.
मैं इस बात को नहीं बतला रहा हूँ कि इसलिए कि उनने गलती की हम भी वही गलती करें.
But I'm just saying that they were all men with weaknesses like us.
लेकिन मैं बस इस बात को बता रहा हूँ कि वो सब हमारे जैसे अंधे कमियां थी वैसे उनमें भी थी.
They were men with failures.
वो भी कमजोरी या पराजित लोग थे.
What about David?
दाऊद कैसे
थे? His name also is mentioned in Hebrews 11.
उसका नाम भी इब्रानी 11 में लिखा हुआ है.
You know what David did? David did me, you know what many of us have not done.
दाऊद ने ऐसे कुछ ऐसे कार्य किए जिसको हमने बहुत लोगों ने किया नहीं.
I don't want even to name what David did.
मैं इस बात को बताना भी नहीं चाहता.
I'm ashamed to say what he did.
वो बताने मुझे शर्म आ रही है.
But you know that story.
लेकिन आप उस कहानी को
जानते हैं. Terrible things he did.
बहुत ही घिनौने काम को उसने.
But he is referred in the Bible as a man who had the same heart that God had. Man after God's own heart.
लेकिन बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ उसका हृदय परमेश्वर हृदय से समीप था और वैसे ही था.
What about Moses?
मूसा कैसे था?
Angry.
बहुत गुस्सेल था.
Struck the rock when he was commanded just to command the rock.
उसको जब उसको कहा गया था कि चट्टान से बातें करो तो चट्टान को मारता है.
Haven't we done that?
क्या हमने नहीं किया है?
Striking.
मारना.
In anger.
गुस्से में.
Calling wrong names.
गलत नामों को लेना.
You know, he called you rebels.
उसने कहा कि तुम विरोधी.
That's a word that he should not have used.
उसको वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना था.
But he did that.
लेकिन मूसा ने किया वैसे.
But he is also in this hall of faith.
लेकिन इस विश्वास के पट्टिका में उसका नाम भी है.
What am I trying to say?
मैं कहना क्या चाहता हूँ?
The context tells us that they ran in spite of their weaknesses, in spite of their failures.
उनकी कमजोरी के कारण के पश्चात भी उनके हारने के पश्चात भी वो दौड़ते हैं.
You know, David repented, of course. He didn't just finish off with his sin.
हम जानते हैं कि दाऊद ने पश्चाताप किया, सिर्फ पाप नहीं किया.
We also are men and women like them.
हम भी ऐसे आदमी और औरत के बारे में पढ़ते हैं.
Let us acknowledge our failure.
हम भी हमारे कमजोरियों को मान लें.
Confess and forsake.
और पश्चाताप करें, माफी की और दूर चलें.
If we have fallen, don't lie there. Get up and run.
यदि हम गिर गए थे तो उठे और दौड़ें.
So these men ran not because they were perfect or flawless. Never made a mistake. No, they ran in spite of all their minus points.
ये लोग इसलिए दौड़ते हैं और इस कारण से नहीं कि उनने गलती की थी या गिरे हुए थे, लेकिन सबके अंदर विश्वास थी.
Does it not encourage us?
क्या ये हमें प्रोत्साहित नहीं करती?
We can also run.
हम भी दौड़ सकते हैं.
If they ran, we can also run.
अगर वो दौड़े थे तो हम भी दौड़ सकते हैं.
If they achieved great things for God, all of us can achieve great things for God.
यदि उन लोगों ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्यों किया तो हम भी कर सकते हैं.
If they lived a life pleasing to God, we can also live lives pleasing to God.
यदि उनने ऐसे जीवन बिताया जो परमेश्वर परमेश्वर को भाता था तो हम
फेलियर इज नॉट फाइनल विद गॉड.
हम जानते हैं कि पराजित होना आखिरी बात नहीं परमेश्वर के सामने.
यू नो यू रीड अबाउट जोसेफ इन दिस चैप्टर.
हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं.
A man was terribly tempted, the worst temptation that can come to anyone.
हम जो यहाँ पर पढ़ते हैं उस यूसुफ के बारे में कि परीक्षा से होकर गुजरता है.
डेविड फेल बट जोसेफ डिड नॉट फॉल.
हम जानते हैं कि दाऊद गिर जाता है लेकिन यूसुफ नहीं गिरता है.
बट जोसेफ वॉज टेम्प्टेड दो ही डिड नॉट फॉल ही वॉज टेम्प्टेड.
हम देखते हैं कि यूसुफ की परीक्षा होती है लेकिन भले गिरता नहीं.
जोसेफ डिड नॉट लिव अ होली लाइफ बिकॉज ही हैड नो टेम्प्टेशन.
अब यूसुफ इसलिए पवित्र जीवन नहीं बिताता क्योंकि उसने परीक्षा से नहीं गुजरा.
डोंट से जोसेफ इफ यू लिव इन बॉम्बे यू विल फॉल. डोंट से दैट.
हम इस प्रकार से ना कहें कि यूसुफ यदि तो बॉम्बे में रहेगा तो गिर जाएगा.
ही वॉज इन अ वर्स्ट सिनेरियो.
वो तो उससे भी खराब एक जगह पे था.
वी आर टेम्प्टेड टेरिबली समटाइम्स.
कई बार हमारी बहुत ही करीब से हमारी परीक्षा.
बट स्टिल जोसेफ टेल्स अस दैट दो वी आर टेम्प्टेड इन स्पाइट ऑफ आवर टेम्प्टेशन वी कैन स्टिल रन.
लेकिन यूसुफ इस बात को बताता कि भले ही मेरी परीक्षा होती तो भी मैं दौड़ सकता हूं.
लुक एट द ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट.
वो कितनी सुंदर पृष्ठभूमि है.
द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से.
दूसरी बात मैं कहूंगा.
द कंडीशंस फॉर दिस रेस.
ये जो दौड़ के जो कारण है.
वी डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन दैट.
इसके बारे में समझाने के लिए समय नहीं.
बट लेट अस जस्ट रीड दैट. व्हाट्स द कंडीशन फॉर रनिंग.
वो जो उसके वातावरण क्या थे दौड़ने के.
ले असाइड एवरी वेट एंड द सिन दैट सो इजिली बिजेट अस.
हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर.
If you want to run as these men did, you need to do these two things.
यदि हमें दौड़ना है इन व्यक्तियों के समान तो ये दो काम हमें करनी है.
You need to set aside certain things.
तो कुछ वस्तुओं को हमें दूर करनी है.
You need to set aside the sin that so easily beset us.
वो ऐसे उलझाने वाली पाप से मुझे हटा के रखना.
Now I don't have to explain that. All of us know that.
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं. हम सब जानते हैं.
If sin comes into your life, your race will be, your running will be shattered.
यदि पाप हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो मेरा दौड़ खत्म हो जाएगा.
द मोमेंट यू रियलाइज दैट समथिंग सिनफुल हैज कम इन टू योर लुक थॉट इमेजिनेशन और एटीट्यूड इमीडिएटली कन्फेस इट.
यदि मेरे मन में इस प्रकार से कोई सोच भी आती है समझ भी आती है कि मैंने पाप किया तो उस बात को मैं पश्चाताप कर लूं.
इफ वी एंटरटेन सिन वी कैनॉट रन.
यदि मैं उस पाप को बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा.
वी विल नेवर फिनिश दैट रेस इफ वी कीप ऑन एंटरटेनिंग सिन.
हम कभी भी उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक उस पाप को हम बढ़ाते.
दैट्स अ कंडीशन फॉर दिस रेस.
ये उस दौड़ का वातावरण यही है.
देयर इज वन मोर कंडीशन.
और एक कारण है उस दौड़ का.
वी नीड टू ले असाइड एवरी वेट.
उलझाने वाले हर एक पाप को.
व्हाट इज वेट.
वो बोझ क्या है.
वेट मे नॉट बी सिनफुल इन इटसेल्फ.
बोझ उसमें पाप नहीं हो सकता.
बट इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ माई रनिंग.
लेकिन उसके कारण मेरी दौड़ की जो गति है वो कम हो सकती है.
सो वी नीड टू सेट असाइड नॉट ओनली सिंस बट वेट्स ऑल्सो.
इसलिए मुझे सिर्फ रोकने वाले वस्तु को लेकिन उलझाने वाले बोझ को भी दूर करना है.
यू नो देर आर मेनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ दैट आर नॉट सिनफुल.
हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो पाप नहीं है.
इफ यू आस्क वेयर इज इट रिटन इन द बाइबल दैट दिस इज सिन.
यदि आप मुझसे पूछें कि बाइबल में कहां लिखा कि ये पाप है.
इट इज नॉट रिटन.
कहीं नहीं लिखा.
आई कैन नॉट से दैट इट इज अ सिन.
मैं नहीं बता सकता कि ये पाप है.
बट देर आर मेनी सच थिंग्स दैट मे नॉट बी सिनफुल बट दे स्लो यू डाउन इन योर क्रिश्चियन लाइफ.
ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो पाप नहीं है लेकिन आपके गति को कम कर सकती है.
वॉचिंग टीवी इज इट सिनफुल.
क्या टीवी देखना पाप है.
लुकिंग एट इंटरनेट इज इट सिनफुल.
क्या इंटरनेट को देखना पाप है.
यूजिंग मोबाइल फोन ऑल द टाइम इज इट सिनफुल.
क्या हमेशा मोबाइल फोन को पढ़ते हैं. क्या पाप है.
None of these things are sinful.
इनमें से कोई भी पाप नहीं.
But all of you would agree with me that if you get engulfed in these things, that can slow your spiritual life down.
लेकिन एक बात को आप मेरे साथ कहेंगे कि इन बातों में इतना ज्यादा घुस यदि मैं घुस जाऊं मेरे आत्मिक जीवन को गति को रोक सकता.
There are many other things like that.
ऐसे बहुत सारी बातें.
You know they are not sins in themselves.
वो अपने आप में पाप नहीं.
But you know that is not going to help you in your spiritual life. Rather they are hindrances in your race.
आप समझ जाते हैं कि आत्मिक जीवन में आपको ये कोई बढ़ोतरी नहीं देगी लेकिन आपकी गति को कम कर देगी.
So I'm not here to tell you what is weight. You need to decide what is weight in your life. You know that.
मैं आपको यह बताने के लिए खड़ा नहीं हूं कि बोझ क्या है आपके जीवन में. आपको निर्णय करना है कि बोझ कौन सा जिसको आप कम कर.
You can stand here, argue and prove that it is not a sin.
आप यहां पर खड़े होकर मेरे साथ वार्तालाप कर सकते हो. करेंगे कि ये पाप नहीं है.
And we will all agree with you.
और हम सब आपके साथ मान भी जाएंगे.
At the same time, you know deep down in your hearts that is slowing you down in your spiritual life.
लेकिन आपके मन के भीतर के भाग में आप जानते हैं कि आपकी गति को ये कम कर रही है आत्मिक गति.
So So what are the conditions?
तो ऐसे कौन से कारण हैं?
Set aside sins.
तो हम उलझाने वस्तुओं को दूर.
Also anything that slows you down in your Christian life, anything that does not edify you.
और ऐसे कोई भी वस्तु जो मेरे मसीह जीवन में दौड़ में मुझे मदद नहीं करती.
And a third thing that I would like to show from here.
तीसरी बात.
Is the conflict of the race.
तो जो लड़ाई है उस दौड़ में.
You know this race is full of conflict.
ये जो दौड़ है इसमें हमेशा लड़ाई है.
Look at what is written here.
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
In verse 1 it says, let us run with patience.
तो वहाँ पे लिखा है कि धीरज के साथ दौड़ें.
You know that is perseverance. In spite of difficulties, impediments, you still need to press on. That is the meaning.
उसका मतलब ये है कि भले मेरे सामने तकलीफ बहुत है, मुश्किलें बहुत है, फिर भी धीरज के साथ मैं दौड़ूं.
And also you look at verse 2.
और उसके दूसरे वचन को भी पढ़ें.
There Jesus is presented as our example.
वहाँ पे यीशु मसीह को हमारा उदाहरण करके बताया
गया. But there we are told about endurance. That word is there. Endure the cross.
और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो ताकत रहे और धरे रहे.
Then the word shame is there.
और वहाँ पर लज्जा के बारे में बताई गई.
And then in verse 3 we read about contradiction of sinners.
और तीसरे वचन में विरोध पापियों के विरोध के हम के बारे में पढ़ते.
Then it says it talks about the possibility of getting weird, getting fainted in your mind.
उसके पश्चात ये भी लिखा हुआ है हम किस प्रकार से निराश होकर साहस छोड़ सकते हैं.
So in connection with this race,
इस दौड़ के बारे में
look at some of the words used.
आप देखिए ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल.
Patience,
धीरज,
endurance,
और ताकते रहना,
shame,
लज्जा,
and contradiction,
और वहाँ पे आपस में उलझना,
getting fainted in your mind,
और वहाँ पे धीरज खो बैठना.
In this race, all these things are there.
इस दौड़ में ये सारे बातें हैं.
This race is a race full of conflicts.
ये दौड़ जो है बड़ी लड़ाई की दौड़ है.
Let us run.
हम दौड़ें.
You know, in the New Testament, there are three words generally used for running in the Greek language.
जो यूनानी भाषा है उसमें तीन शब्दों के इस्तेमाल की गई है दौड़ को बतलाने.
They are translated in slightly different ways.
और सो ट्रांसलेशन थोड़े अलग अलग ढंग से हुई.
And the word translated run here in chapter 12.
और 12वें अध्याय में जो दौड़ने के बारे में बताई गई है.
That word actually means agony, great deep pain. That's the meaning of that word.
उसका मतलब उसका वास्तविक अर्थ यह है कि बहुत बड़ा दुख या तकलीफ.
It is also, it can be translated as battle.
वो उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से भी कि वो लड़ाई.
Another word translating that is competition.
और दूसरा है
competing with somebody.
स्पर्धा कह सकते हैं.
ओके सो द वर्ड रनिंग यूज्ड हियर लेट अस रन दैट वर्ड मीन्स रन विद ग्रेट डिफिकल्टी. दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड.
माफ करना प्रतियोगिता उसका मतलब है बड़े बड़े प्रतियोगिता के साथ दौड़ना.
दैट मीन्स देयर इज बैटल इन दिस रनिंग.
मतलब यह है कि इस दौड़ में लड़ाई है.
यू टेंड टू बिकम टायर्ड एंड फेंटेड इन योर माइंड एज यू रन.
हमारे मन में हम सब निराश और साहस खोकर हम शायद हार सकते हैं. प्रकार से दौड़ते हैं.
इवन इफ आई डोंट टेल यू एनी ग्रीक वर्ड ऑल ऑफ यू नो दैट वी ऑल गेट टायर्ड राइट.
यदि मैं आपको यूनानी भाषा ना बताऊं तो हम जानते हैं हम सब थक जाते हैं.
इवन इफ यू डोंट नो दिस वर्ड वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी ऑल फेंट समटाइम्स गेट टायर्ड समटाइम्स.
हमारे अनुभवों से हम इस बात को जानते हैं कई बार हम निराश हो जाते हैं हम थक जाते हैं.
यू सी दिस इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन विथ द सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी यू हियर टूडे.
मैं जो बता रहा हूं वो बातें उनके विरोध में लगती होंगी जिसको आज चारों तरफ हम सुनते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप तरक्की करोगे.
टुडे पीपल से यू फॉलो द लॉर्ड एंड द लाइफ इज गोइंग टू बी जस्ट वंडरफुल ऑल योर प्रॉब्लम सॉल्वड.
चारों तरफ लोग कहते हैं कि यदि आप प्रभु के पीछे हो जाएंगे आपकी सारे समस्याएं सुलझ जाएंगी.
वेयर इज दैट इन द बाइबल. विच बाइबल सेज दैट.
कौन सा बाइबल ये बताता है?
माई बाइबल सेज इट इज फुल ऑफ एगनी बैटल कॉम्पिटिशन ट्रबल वियरनेस टायर्डनेस.
मेरे बाइबल इस बात को बताते हैं कि हमेशा इस दौड़ में सिर्फ लड़ाई है प्रतियोगिता है निराश होना है और साहस खोना है.
इफ यू स्टिल डोंट बिलीव
यदि आप विश्वास नहीं करते
रीड चैप्टर 11 वर्सेस 35-38.
इब्रानी 11 उसके 35-38 तक आप पढ़ें.
ओह देयर यू रीड अबाउट टॉर्चर वर्स 11:35.
उस 11 के 35 में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से खतरों से वो गुजरते हैं.
एंड वर्स 36 सेज मॉकिंग्स एंड स्कॉर्जिंग्स.
और 36 वचन में ठट्टे उड़ाना और कोड़े खाने.
बोन्स एंड इम्प्रिजनमेंट.
और कैद में पड़ा जाना और परखे जाना.
वर्स 37 stoning.
37 पथराव किए जाना.
And slain with sword.
और उनको तलवार से मारे गए.
Wandering about in sheepskins and goatskins.
हम देखते हैं किस प्रकार से कंगाली भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े भागते हैं.
Afflicted and tormented.
इधर उधर मारे मारे फिरते हैं.
That is the conflict.
यही है समस्या.
So did those men in Hebrews 11 run because they had absolutely no problem?
11वें अध्याय में इब्रानियों में उन लोगों ने इसलिए दौड़ा क्योंकि कोई समस्या नहीं थी?
No. Terrible conflicts.
हम देखते हैं किस प्रकार से तकलीफों से
life threats.
उनके जीवन खत्म होने
tormented and tortured physically, mentally.
और उनका हम देखते हैं कि किस शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्लेश से गुजरते हैं.
There is conflict in this race.
इस दौड़ में काफी क्लेश है.
We should never get discouraged.
हम निरुत्साहित ना हो.
That is how Christian life is designed.
मसीह जीवन का इस प्रकार से क्रम बनाया गया.
In John 16:33, the Lord said.
योहन्ना 16:33 में यीशु मसीह कहते हैं.
You have tribulation in the world.
ये संसार में तुम्हें क्लेश होंगे.
He did not say you may have.
उन्हें ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें हो सकता है.
He did not say some of you may have.
उन्हें नहीं कहा कि आप में से कुछ लोगों को.
All of us have.
सबको होगा.
Some of us are, you know, in some places in the world, they are physically tortured.
हम जानते हैं संसार के कई भागों में विश्वासियों को शारीरिक रूप से क्लेश पहुंचता
है. Many of us may not be physically tortured.
हम में से कई शारीरिक रूप से क्लेश को नहीं सहते होंगे.
But mental torture.
लेकिन मानसिक.
Mental battle.
और मानसिक वो लड़ाई.
We are left alone.
हम अकेले छोड़ दिए.
We are ridiculed.
हमारे खिलाफ लोग.
People cannot understand us.
लोग हमें समझते नहीं.
You take a stand for God and even other believers misunderstand you.
कई बार आप प्रभु परमेश्वर के लिए एक जगह स्थान बना लें तो विश्वासी भी आपको नहीं समझते.
In this race, there is conflict.
इस दौड़ में क्लेश है.
In spite of the conflicts, they all ran.
इन समस्याओं के बावजूद भी वे दौड़ते.
That should encourage us.
ये हमें प्रोत्साहित करें.
Come back to John 16:33. I mentioned.
योहन्ना 16:33 में आ जाएं.
You have tribulation.
तुम्हारे ऊपर क्लेश आएंगी.
Did the Lord stop with that?
क्या परमेश्वर से रुक गए?
What's the rest of the word?
उसके बाद क्या कहते हैं?
But be of good cheer. I have overcome the world.
लेकिन इस बात से खुश रहो क्योंकि मैंने संसार के ऊपर विजय को प्राप्त की.
I am with you.
मैं तुम्हारे साथ.
The one who overcame the world.
जिसने संसार के ऊपर विजय.
One who has all authority in heaven and earth.
जिसके पास सारे अधिकार आकाश और धरती पे.
I am with you.
मैं तुम्हारे साथ हूँ.
In spite of the conflicts, we can still run.
क्लेश और समस्याओं के बावजूद भी हम दौड़ सकते हैं.
And finally.
और आखिरी में.
Here, this passage talks about the captain of the race.
हमारे जो दौड़ का कप्तान कौन है उसके बारे में.
Who is the captain? Verse 2.
दूसरा वचन कप्तान कौन है?
Jesus, the author and finisher of our faith.
हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो सिद्ध करने वाला है हमारा दौड़ का कर्ता धरता है.
Author means the one who begins, the one who leads.
कर्ता का मतलब ये जो शुरुआत करता है.
The leader, the one who shows the way, that's the meaning of the captain, the author.
कर्ता का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमें रास्ता दिखाता है हमारा लीडर.
एंड देन द अदर वर्ड फिनिशर.
और दूसरा एक भाग है जहाँ पे लिखा है कि पूरा करने वाला.
दैट मीन्स वन हु ब्रिंग्स एवरीथिंग टू इट्स प्रॉपर कंक्लूजन.
जो इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो सब बातों को बंद कर देता है, खत्म कर देता.
सो हु इज द कैप्टन ऑफ आवर रेस.
तो हमारे इस दौड़ का कप्तान कौन है?
यू नो हियर इट सेज जस्ट जीसस.
यहाँ पर सिर्फ कहता है यीशु.
You know, many other places it says Lord Jesus, Christ Jesus and all that.
कई जगहों पर प्रभु यीशु या मसीह यीशु करके लिखा हुआ
है. Why is it just mentioned Jesus only here?
वहां पे क्यों सिर्फ यीशु लिखा हुआ है?
The probable reason is,
कारण यह हो सकता है,
that is to remind us that he was a man like us who ran this race in this world of conflicts that we live in.
और इसलिए शायद लिखा हुआ क्योंकि वो भी हमारे जैसे एक आदमी था जो संसार में रहते हुए समस्याओं के बीच उसने दौड़ को किया.
His human race, race running is emphasized by using just his human name.
यीशु का मानसिक जो दौड़ है सिर्फ उनके नाम को वहां पर बताते हुए बताई गई है. अर्थात
वी नीड टू लुक टू दैट कैप्टन.
हम उस कप्तान की ओर ध्यान दें.
हु इज आवर कैप्टन?
हमारा कप्तान कौन है?
जीसस.
यीशु.
व्हाई इज ही कॉल्ड जीसस?
यीशु क्यों कहा गया है?
जस्ट टू रिमाइंड अस दैट ही लिव्ड लाइक अस इन दिस वेरी वर्ल्ड.
ताकि हम इस बात को याद रखें कि हमारे जैसे यीशु भी संसार में जीता.
ही ऑल्सो रन द रेस.
वो भी दौड़ता है.
एंड व्हाट इज हिज नेम?
उसका नाम क्या है?
द ऑथर, द बिगिनर, द लीडर, द वन हु शोस द वे.
जो अगवा था, जो करता था, जो रास्ता दिखाता है.
एंड हिज अनदर नेम इज द फिनिशर. दैट मीन्स वन हु विल ब्रिंग एवरीथिंग टू इट्स प्रॉपर कंप्लीशन.
उसका दूसरा नाम है सिद्ध या पूर्ण करने वाला, अर्थात दौड़ को पूरा करने वाला.
एंड व्हाट आर वी आस्क्ड टू डू?
और हमें क्या करना है?
वी आर आस्क्ड टू लुक अनटू हिम.
हमसे कहा गया कि उसकी ओर तुम ताकते रहना.
यू नो द वर्ड लुक यूज्ड हियर इज अ स्पेशल word,
यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया ताकना वो विशेष है.
It means take your eyes off something and concentrate on something.
उसका मतलब ये है कि तुम्हारे दृष्टि को किसी और चीज से निकालकर उस वस्तु से हटाकर किसी और वस्तु पर ध्यान दो.
Look away from one thing to another.
एक वस्तु से अपने दृष्टि को हटाकर दूसरे वस्तु को अपने दृष्टि को रखो.
It is interesting that we are not asked to look to any of these witnesses.
मजे की बात यह है कि यहाँ पे कहीं लिखा गया कि तुम उन गवाहों के ऊपर देखो.
Their story encourages us.
उनकी कहानी हमें प्रोत्साहित करती है.
But the writer does not say, therefore, look at all the people in Hebrews 11.
लेकिन लेखक इस बात को कहीं नहीं लिखता कि तुम उस 11वें अध्याय के लोगों के ऊपर ध्यान दो.
They are there to clap and to pat on our back.
वो हमारे लिए शायद ताली बजाने के लिए तैयार हैं.
But we have to look only to our captain.
लेकिन हम सिर्फ हमारे कर्ता या कप्तान के ऊपर देखें.
If you run your race looking at anything or anyone else, I guarantee you will be discouraged.
मैं इस बात को बता दूं कि यदि हमारे दृष्टि को किसी और व्यक्ति के ऊपर रख कर दौड़ते हैं तो हम नहीं जीत पाएंगे.
Some people say, I thought Brethren Assembly was very good.
मैंने कई बार लोगों से इस प्रकार सुना कि लोग सोचते हैं कि Brethren Assembly बहुत अच्छा है. मैंने सोचा.
That's why I joined this group.
इसलिए इस कलीसिया में मैं आता हूं.
After joining, I found out that there are problem in Brethren Assembly also.
उन लोगों के बीच में आने के पश्चात मुझे पता चला कि Brethren कलीसिया में बहुत समस्या है.
So I am going back to my old church.
इसलिए मैं पुराने कलीसिया में जा रहा हूं.
I thought that brother in this assembly is very good brother.
मैंने सोचा कि इस कलीसिया का वो भाई बहुत अच्छा है.
But when I got to know him,
लेकिन जब मैंने उसको पहचानना शुरू किया,
realize he is not that good as I thought.
मैंने समझ गया कि वो जितना अच्छा मैं सोचा था.
So I'm going back to my old church.
जैसे मैं पुराने चर्च में वापस जा रहा हूँ.
You know what the problem is?
आप जानते हैं समस्या क्या?
Don't join thinking that these people are good.
ये सोच के मत join करें कि लोग अच्छे हैं.
We have to be good. There's no doubt about it.
समस्या नहीं कि हमें अच्छे होना.
But if you look at the assembly or the people or the leaders or the preachers, one day you are sure to find out some mistakes about them.
यदि आप उन लोगों को या व्यक्तियों को देखकर उस कलीसिया में जुड़ते हैं, एक ना एक दिन आपको उन लोगों में गलती.
And then you will be shattered.
और फिर आप बड़े दुखी हो जाएंगे.
But if you look at this captain,
लेकिन यदि आप इस कप्तान को देखेंगे,
are you going to find out something wrong with him after 10 years?
क्या 10 साल के पश्चात उस कप्तान में कोई गलती देखेंगे?
Oh, he is not faithful as I thought.
हाँ, वो मैंने सोचा कि जितना विश्वास योग्य वो नहीं है.
He is not that trustworthy.
उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकता.
No one has ever said that.
किसी ने नहीं कहा.
No one can say that.
कोई नहीं कह सकता.
Yesterday, today and forever, Jesus is the same.
कल, आज और अबद तक यीशु मसीह एक ही है.
That's what we read in Hebrews.
इब्रानी के पत्र में
the very same book.
इसी अध्याय पुस्तक.
Therefore,
इसलिए
take your eyes off all the other things.
आपकी दृष्टि को बाकी सब वस्तुओं से हटा दें.
And focus it on him.
और उसके ऊपर ध्यान दें.
Then it also says consider him. That means meditate upon.
और उसके आगे इस प्रकार से लिखा, उनकी भी चिंता कर, उनके बारे में सोचें.
Not only just look.
सिर्फ देखना सिर्फ नहीं.
मेडिटेट.
उसके ऊपर चिंता या मनन करो.
स्पेंड टाइम ऑन हिम.
उनके ऊपर मनन मनन करो.
देन
तब
यू कैन रन.
दौड़ सकते हो.
इन अ मैनर प्लीजिंग टू गॉड.
जो परमेश्वर को भाता होगा.
व्हाट एन एनकरेजमेंट.
ये कितनी प्रोत्साहित करने वाली बात है.
व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट.
यहाँ पे पृष्ठभूमि क्या है.
मेनी हैव रन.
बहुत सारे लोग.
दे आर नॉट अलोन.
हम अकेले नहीं है.
दे रन इन स्पाइट ऑफ द वीकनेसेस एंड देयर फेलियर्स.
अपनी कमजोरी और गलतियों के बावजूद भी दौड़ते.
दे रन इन फेथ इन गॉड.
प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रख के दौड़ते हैं.
वी कैन डू द सेम.
हम भी दौड़ सकते हैं.
व्हाट इज द कंडीशन.
लेकिन कारण कंडीशन क्या कारण क्या है.
ले असाइड एवरी वेट एंड सिन दैट सो इजिली विजिट अस.
हर रोकने वाले वस्तु रोल जाने वाले पाप को दूर करें.
थर्डली देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रेस.
तीसरी बात, इस दौड़ में समस्याएं और क्लेश होंगी.
यू नीड पेशेंस.
तुम्हारे अंदर धीरज होना.
यू टेंड टू गेट डिस्करेज्ड.
हो सकता है आप हतोत्साहित हो जाए.
बट द लॉर्ड सेज डोंट बी डिस्करेज्ड, आई एम विद यू.
लेकिन प्रभु कहते हैं तुम हतोत्साहित मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं.
फाइनली
आखिर
कैप्टन ऑफ द रेस.
हमारा कप्तान दौड़कर.
लुक एट हिम.
उसकी ओर देखें.
यू विल नेवर बी डिस्करेज्ड.
तो आप कभी हतोत्साहित.
यू विल नेवर फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद हिम.
कभी निराश नहीं होंगे. उसमें कोई गलती नहीं.
ऑल दोज हू हैव लुक्ड एट हिम, दे वर देयर फेसेस वेयर यू नो ब्राइटन.
जिन लोगों ने उसके ऊपर देखा उनके 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 चेहरे पर उजाला गया.
एंड द राइटर सेज लेट अस रन.
लेखक कहता है आओ हम दौड़ें.
Is anyone discouraged here this morning?
आज यहाँ पर ऐसा कोई है जो निराश है.
Maybe because you failed.
क्योंकि आप हार गए थे.
Maybe because of your weakness.
हो सकता है आपकी कमजोरी थी.
Maybe because of some conflict that you are passing through.
हो सकता है ऐसी कुछ समस्या जैसे आप गुजर रहे हैं.
You are thinking I'll give up.
हो सकता है आप कह रहे हैं मैं छोड़
दूँ. Let me quit what's the point in continuing.
मतलब नहीं है मैं सब छोड़ना चाहता.
Oh my brother, God tells you, my sister this morning, don't quit.
प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे कहता है आप छोड़ना नहीं.
You don't have to quit.
आपको छोड़ने की जरूरत.
The Lord will help you.
कोई और परमेश्वर.
Take your eyes off everything and focus on him.
बाकी वस्तुओं से दृष्टि हटाकर उसके ऊपर दृष्टि लगाएं.
What a word of encouragement.
कितने अच्छे प्रोत्साहित करने.
May God bless these words to our hearts.
परमेश्वर वचन के हमारे ऊपर आशीष दें.